नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन देवं जड्दञ्जाबुदरुचिसंविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि रसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन् दामोदरं ध्यायेन् दामोदरम् गुरु गौरांगीर कृपा आज हम लोगों का छठवां दिन भी निर्विघ्न रूप से परिक्रमा हमारी संपन्न हुई। सब लोगों ने श्री गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती के स्थापित ठाकुर का स्वादिष्ट महाप्रसाद भी आप लोगों ने पाया। आज हम राधा रमण में हम लोग गए थे। राधा रमण गए छे तो राधा रमण
फर्स्ट श्याम सुंदर
देन
निधुवन देन राधा रमण राधा गोपीनाथ राधा गोकुल
राधा रमण राधारमण जी किस प्रकार से श्रील गोपाल भट्ट के प्रेम से सार्वग्राम होते हुए राधारमण के रूप में आत्म प्रकाश किया बतलाए हुए वहां पर क्यों बोले छिल रे के बोले छिल बोले यू कैन स्पीक very very brief
Hari Bhakti Vilas, which gives all of the prescriptions and important activities for Vaishnava Sadachar, and all of the activities from birth until passing from this world, all the rituals necessary for Diksha, initiation, taking of sannyas, marriages and so forth, which the Vaishnavas must execute in Varnashram Dharma. So he wrote the book Sat Kriya Sara Deepika, and so he gave this special contribution without which the Vaishnava community would not know how to perform their activities within this world in Daivi Varnashram Dharma. So Gopal Bhatta Goswami, he used to worship Shalagram Shilas, and the Shalagram Shilas were his life and soul, but he was feeling bereft of the opportunity to serve them as some of the other Goswamis had Thakurjis like Sri Govindaji, Gopinathji. And especially during Julanyatra time, when there is a very beautiful swing ceremony, that Gopal Bhatta Goswami desired within his heart that he would have a deity that he could also dress very beautifully with arms and legs, but the Shalagram Shila has no manifested arms and legs and head that you can decorate. So in his heart, this desire was there. And because Sri Krishna always fulfills the internal heart's desire of his pure devotees, how they want to serve him. So when Gopal Bhatta Goswami placed his shalagrams, as he usually did, he kept them in a box for worship. And when he came there the following morning, then when he opened up the box, oh, there was the self-manifested deity of Sri Radha Raman Jeeva. And that deity which we saw today is that very same manifestation of Krishna, who himself has appeared, not being carved by the hand of any person. It is also evident, we hear, we have not seen, but on the back side of Radha Ramanji, it appears just like Shalagram. But from the front side, he is Tripanga Lalita form, a threefold curved form, very beautiful, holding flute with beautiful lotus eyes. And Sri Gauranga Mahaprabhu also appeared in the dream of Gopal Bhatta Goswami and told him that I myself am not different than this Radharaman Jew. Radharaman is also said to be a combination of the three predominating deities of Vrindavan, Sri Sri Radha Govinda, Gopinath and Madan Mohan. So the three deities of Vrindavan are representations of Sambandha, Abhideya and Prayojan. And the deity of Madan Mohan Jiyu, who was the deity of Sanatana Goswami, is the deity of Sambandha. And it was described also that those original deities of Vrindavan, which came to Vrindavan with Vajranaba, the grandson of Krishna, just after the disappearance of Krishna, they were actually carved by Vishwakarma. And they were carved direct under the direction of Uttara, who was a personality who had personally seen Krishna's transcendental form. And so therefore she directed Vishwakarma when he was carving the three deities of Govinda, Gopinath and Madan Mohan. So when he was carving them, then Uttara told, oh, this deity of Madan Mohan, his lotus feet exactly resembles that of Krishna. Then when he carved Govindaji, then she told, yes, the beautiful lotus face of this deity exactly resembles that of Krishna's beautiful lotus face. And when he was carving the deity of Radha, of Gopinathji, then she remarked, yes, yes, the beautiful broad chest of Gopinath is exactly as Krishna's. So this manifestation of Sri Radha Ramanji is actually a combination of all three of these transcendental deities, and therefore the lotus face of Radha Ramanji is considered to be non-different than Govindaji. His lotus feet are non-different than Madan Mohanji, and his lotus chest is non-different than Radha Gopinathji. So Sri Gopal Bhatta Goswami, he performed very elaborate worship and abhishek and installed and had this beautiful temple of Radharaman built for the worship, and ordained that worship to various pure Vaishnavas who were there at the time. And that deity worship is still extending down to this very day in the family lines of those original Pujaris who took care of Radharamanji. So we're very fortunate that we had the opportunity under Srila Gurudev's direction to see this original deity. Most of the deities, original deities, have been taken outside of Vrindavan for their protection when the Muslims invaded here nearly 450 years ago. But this deity of Radharamanji, he has never left Vrindavan. So all the residents of Vrindavan, they're always chanting Jai Jai Radha Ramana Hari Gaur.
লোকনাথ গোস্বামী সম্বন্ধে কিছু বলো। ওখানে তো বলা হয়েছে, তো তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলো।
গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় সদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রিয়াদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ 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 হরি 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 রাম হরি রাম 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 হরি হরি। মে সর্বপ্রথম মে গুরুদেব তিলা বিষ্ণু বিষ্ণু ভাত হর্ষোদ শ্রী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি স্বরূপ সিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ চরণ কমল অনন্ত কোটি সাক্ষাৎ দলবন্ধ নাম তৎপশ্চাৎ মহারাজ ব্রজমন্ডল পরিপালী বৈষ্ণব থে বড়ে মহাপুরুষ থে জিসনে জীবন সংকল্প গ্রহণ কিয়া থা হম কবি জিন্দগি কবি হম শিষ্য হম বনায়েঙ্গে সংকল্প হয়। ক্যোকি বৈষ্ণব কা স্বাভাবিক স্বভাব হয় ও হর সময় আপনা কো ত্রিনাথ ভি সুনি চেয়েগা তরল ভি সুনি সুনা আমারি নাম মান দেনা কীর্তনীয় সদা হয়। যে জিতনে সাধু ভজন করতে তেন নম্রতি গুণে দে জানা নম্রতি জেসে পেড় মে हर मने पर वो पेड़ अपने आप झूम जाती है। उसी तरह का जीव का अंदर में जितने सदगुण आए वो स्वाभाविक रूप में वो अपना को दीन हीन मानता है। जैसे मेरा जैसे राधा है बोलती है मेरे अंदर में तो भक्ति की लवलेस भी नहीं है, कोई भक्ति के गुण भी मेरे अंदर में नहीं है। ये भक्तों का एक स्वाभाविक भक्ति आने पर अपने आप अपना को दीन हीन मानते हैं। लेकिन कभी कभी वैष्णव लोग आचार्य का काम करते हैं, बड़े बड़े आचार्य का काम करते हैं, शिष्य करते हैं। यदि महाप्रभु जिसको द्वारा जिस रूप में जगत में धर्म को स्थापन करना चाहते हैं, जगत में भगवत भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, महाप्रभु जिसको द्वारा जो काम करवाते हैं। इसलिए कभी जो लोग बहुत सारे शिष्य बनाते हैं फिर कभी काम नहीं, क्योंकि भक्ति से काम सबसे को सारे प्रभु हाँ, और हमारे गुरुवार को दिखाई पड़ता है इन लोगों के साथ दुनिया को शिष्य रखा है। श्री रामानंद आचार्य गुरु जी ने बोले ये मंत्र किसको नहीं बोलने का, ये मंत्र जो सुनेगा क्या होगा, सीधा भगवत धाम में चला जाएगा, किसको बोलना नहीं। लेकिन रामानंद आचार्य पूरा ऊंचे खंभे को ऊपर चढ़ करके बोले सब लोग को बुला दिया, सब लोग को बुला करके बोले भैया ये मंत्र को सुन लो, भले ही अच्छा लगे मुझे कोई बात नहीं, लेकिन जो सुनेगा वो तो भगवत धाम में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने सब लोगों ने इसलिए महागुरु जिसको द्वारा देने जैसे काम करवाना चाहते थे वो उसी अनुरूप काम करते, इसलिए कि बड़े निष्क्रिय जनरेशनल थे। अरे महागुरु रह रहे थे, कल हम लोग जाएंगे कि क्षेत्र उमराव नाम
खदीर बन में रहते थे,
खदीर
बन में
वहीं पर रह करके साधन भजन करते थे। जब वहीं पर रह करके साधन भजन कर रहे थे, अभी ठाकुर जी स्वयं इनकी सेवा ग्रहण करने के लिए स्वयं राधा विनोद जी को स्वप्न दिया, लोकनाथ मैं अभी एक ईश्वरी कुंड में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मुझको निकालो। जब लघुनाथ दास गोस्वामी वो कुंड में स्नान करने गए, उसी समय उनको हाथों में ये ठाकुर जी स्वयं उनको हाथ में आए, अपने आप आए। इसलिए आज सवेरे मैं वहां पर बता रहा था, हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं जो कि किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं जाते थे, हम लोग ये गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग आए हैं, क्योंकि दूसरे दूसरे संप्रदाय में किसी ना किसी तरह से बहुत कठिन से कहीं एक कहीं ठाकुर जी प्रकट हो गए, नहीं तो किसी संप्रदाय में ठाकुर रहे थे। जैसे बल्लभपुर में वहां पर हमारे जो श्रीनाथ जी, यही श्रीनाथ जी को ही वो अपना ठाकुर मान रहे, लेकिन ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का ठाकुर है। राधा वल्लभ वो भी हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य, हाँ उन्होंने राधा वल्लभ मुझे प्रकट किया, लेकिन किसी भी संप्रदाय में है केवल एक ठाकुर, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इतने सारे गोस्वामी सबके सब एक विग्रह स्थापन किया सभी का। इसलिए हम लोग अहोभाग्य, हम लोग कितने सारे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद दामोदर, कितने सारे गोस्वामी एक गोस्वामी एक ठाकुर जी को स्थापन किया और एक एक ठाकुर जी को प्रकट किया, उनको कथा भी हम लोग श्रवण करते हैं। इसलिए कि लोकनाथ दास गोस्वामी को हाथ में जब ये राधा विनोद जी आए, विनोद जी साक्षात उनके साथ में बात कर रहे हैं, कहते क्यों, कहते लोकनाथ दास गोस्वामी कौन है, कहते ये मंजुलाली सखी है, कृष्ण लीला में ये मंजुलाली सखी, मानो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण गोलक वृंदावन विपुल जगदी सपार्षद शिवधाम सभापति संपूर्ण गोलक वृंदावन निकुंज को साक्षात रूप में यहीं पर प्रकट कर दिया। इसलिए महाप्रभु का जितने सारे परिकर सबके सब नित्य सिद्ध परिकर है और सबके सब का जो जीवनी एक अद्भुत एक आश्चर्यमय जीवन है लोगों का। अभी ठाकुर जी प्रकट होकर के इनको साथ में बात कर रहे हैं, बोले लोकनाथ बड़े दिन से नहीं भूखा मेरे शिशु खिला, तो लोकनाथ दास गोस्वामी उनको पास के जो उन्होंने बना करके ठाकुर जी जो खिलाए, बोले लोकनाथ बगल चाकने से थोड़ी खाया जाता है, तो अगर चाकने बना के खिलाओ, तो उन्होंने इमली पत्ते को बोले तो मैं इमली पत्ते खिलाए और उसी को उन्होंने चाकने बना के ठाकुर को खिलाए, बोले मेरे विश्राम करवाओ, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके उन्होंने पुष्प की सज्जा बना करके ठाकुर जी को सुलाए, बोले लोकनाथ बड़ी गर्मी लग रहा है थोड़ा पंखा से बुला दो, तो उन्होंने पत्तल पत्ते लाके कोमल को पत्ते लाके उनको पंखा खिलाए, कहते नींद नहीं आती तो सिर्फ चरण को थोड़ा दबा दो, उन्होंने उनको चरण दबाए तो ठाकुर जी ने चैन से विश्राम कर लिया। इसलिए इनके साथ में ये साक्षात रूप से डायरेक्ट ठाकुर जी बात करते हैं, हमारे सारे कुछ का देश है, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो निकुंज जगह की राधा रानी एक के प्यारी का ये सखिया है। इसलिए श्री नर्मदा ठाकुर जी जब सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए आए, अभी वो चाह रहे हैं कि गुरु का जान के पानी पियो छोड़ मिले, इसलिए गुरु जान में कहनी चाहिए, जब वे भजन करने के लिए आए उन्होंने ढूंढे ऐसे कोई स्पीकर भजन पर आए, ऐसे कोई संत मिले जिनका चरणाश्रय करके मैं भजन करूं, तो उन्होंने पता लगाया यहाँ पर एक रिवर में एक लोकनाथ दास गोस्वामी नामक एक संत निवास कर रहे हैं। अभी ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे श्री गुरुदेव हम कृपा करके अपना श्री चरण में आश्रय लिए। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कभी जिंदगी में हमने चेला बनाई बदाम का कुछ उन्होंने बोले मेरे चेला नहीं बना प्रतिज्ञा किया है। लेकिन इन्होंने हृदय में अपना गुरु जी को उनको अपना गुरु जी रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए जब उनको एक बार गुरु जी रूप में वो स्वीकार कर लिए मतलब क्या है उनको गुरु जी बन गए। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो नाता वो नित्य है ऐसे में साधारण ये नहीं ये नित्य उनको साथ में गुरु जी को साथ में शिष्य का नित्य संपर्क। इसलिए अभी वो दिखा देना चाहते नहीं अभी इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं अभी किसी रूप में गुरु जी को संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी संतुष्ट करो तो कैसे हम संतुष्ट करें एकमात्र गुरुदेव संतुष्ट होते हैं उनको सेवा के द्वारा। इसलिए सोचा कि जिसकी चरण पर सब किसी तरह से थोड़ी सी चुन मार करके लाते हैं और किसी तरह से खा कर भजन करके तो कोई सेवा की कोई जरूरत ही नहीं सेवा की। अभी हम कर क्या तो उन्हें लाख में देखा ये जो शौच क्रिया जब ये करने जाते हैं कम से कम ये शौच क्रिया करते समय यही सेवा में कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने जहाँ पर शौच क्रिया करते थे वो स्थान को रोज पूरे सुंदर रूप में उस स्थान को परिष्कार कर देते थे। लोकनाथ दास को समझते था ये रोज रोज ये स्थान को साफ कौन करता है हो ना हो इसको चरण में अपराधी तो नहीं बन रहा हूँ। अभी एक दिन उन्होंने चुप करके देखा वही नारद जो उस दिन पहले मेरा शिष्य बनने के लिए आया था वही नारद महाराज के स्थान को साफ करता है। फिर मैं जाकर उनको पकड़ लिया कि तुम मेरे को अपना अपराध क्यों बना रहे हो क्योंकि सेवा जिसका हम ग्रहण करते हैं हमें कुछ देना ही पड़ता है और ये सबसे सबसे छोटा सेवा है। इसलिए उन्होंने कहा मेरे को अपराधी क्यों बना रहे हो आपका श्री चरण को मैं एक बार हृदय में धारण कर लिया आपको ही गुरु रूप में हृदय में मुझे बैठा लिया है। इसलिए गुरुदेव मैं देखा आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ देखा इस सेवा को करा दी मैं संतुष्ट कर सकता हूँ। फिर उन्होंने रीझ करके फिर उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किया है फिर उन्होंने उनको शिष्य बन गए। इसलिए हम वहां पर बता रहे थे इसलिए गुरु जी को साथ में जो शिष्य का नाता है वो एक जन्म का नाता नहीं ये जन्म जन्मांतर का ये नाता है। ऐसे नहीं हमने किसी तरह से आकर के गुरु जी के चरणों में हमने शरणागत हो गए नहीं प्रभुपाद कर रहे थे अपना शिष्य के लिए जो एक बार मेरे चरण में एक बार आया और मेरे उपदेश को सही सही रूप में आचरण कर रहे हैं जितने जन्म तक उसका उद्धार नहीं हो तब तक किसी जगत में आकर के मैं अपना उसको जब तक धाम में उसको पहुंचा नहीं देता हूं तब तक किसी जगत में मैं आते रहूं। गुरुदेव यहां पर संकल्प प्रकट करते हैं इसलिए ऐसे नहीं गुरु जी का कारण एक मंत्र दे दिया ये संपूर्ण रूप में शिष्य का संपूर्ण जीवन का दायित्व लेते हैं ऐसे नहीं करो और इसलिए जन्म जन्मांतर में गुरुदेव आकर के हमारा घर में कृपा करते हैं। इसलिए गुरु जी के साथ में नाता नित्य नाता है। इसलिए मैं वहां पर कुछ बात बता रहा था हम देखते हैं कुछ भक्तों को गुरु जी के पास में आए दीक्षा पत्र ले लिया फिर कुछ दिन बाद देखते हैं बाबा जी के पास सारे कट्ठी नहीं तिलक नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए कहा बाबा जी ने कहा पूछ लिया जा करके उनको किसने फुसला करके कहते गौड़िया मठ में कोई गुरु परंपरा नहीं ये प्रभुपाद तो गुठली चुसते हैं ये तो कोई राग भक्ति का शिक्षा नहीं देते ये मंजे कुमार नहीं देते ये सीधो स्वरूप नहीं बताते उल्टा सीधा पाठ बनाया और पढ़ा करके अपना पास फेंक करके उनको पूरा उनको सीधो स्वरूप किसका रसगुल्ला मंजरी किसका पचौड़ी मंजरी किसका लाठू मंजरी इसे सब नाम दे दिया। कुछ दिन बाद आपने दिखाई पड़ा गौरी वैष्णव आए मठ में यहाँ पर चार धनी चलते हैं लेकिन बाबा जी को तो कभी चार कभी चलता ही नहीं वो कभी सिगरेट भी फूंकते हैं तंबाकू भी खाते हैं कभी माता जी को साथ में जो संपर्क भी है। कुछ दिन बाद ये सब चीज को देख करके तो किसम क्या हो रहा है और कुछ दिन बाद वो तो उसका वास्तव स्वरूप है नहीं वो तो सिद्ध स्वरूप का अवस्था है। ये तो साधारण जब काम काम बोलते दास है या तार लाठी खाए हाँ जो कि काम बोलता दास बन करके अभी हम निष्पेषित हो स्वरूप सिद्धा नाम दिया तो ये तो सिद्धा है लेकिन ये पूरा कितना एक अलग चीज दिया फिर इसको मन में मजबूत किया कि ये क्या चीज है फिर दो दिन बाद में सब के सब छोड़ छाड़ करके बास कंठी महा तिलक उतार करके फिर शराब में ना मांस है ना फिर दो बार पूरा माया में प्रवेश कर जाते हैं इसलिए कि वास्तव रूप में गुरु जी को साथ में जो संपर्क है सदगुरु को साथ में वास्तव रूप में सदगुरु धीरे धीरे उसको भगवत चरण तक पहुंचाने चाहते हैं इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर हृदय विशुद्ध जन्म चक्षुदार दिला दे जन्मे जन्मे प्रभु से एक जब एक जीवन के साथ में गुरु जी का संपर्क नहीं ये संपर्क जन्म जन्मांतर गुरु जी के साथ में संपर्क है इसलिए अगर सचमुच से गुरु जी का चरणार्थ हम करके गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं जब तक हम तो भगवत चरण में नहीं पहुंच सकते तब तक गुरु जी बारम्बार आकर के हमारा मदद करते हैं आकर मदद करते जैसे हम गोप कुमार जी से हम बात सुन रहे थे भगवान के कवि गुरु रूप में गुरु जी कभी आकर के विभिन्न रूप में उसको ऊपर लेकर के भगवत चरण में पहुंचाना चाहते इसलिए ये नरोत्तम दास ठाकुर जीवन में आना है कभी वो मुझे हरिनाम कर रहे थे हरिनाम करते समय कोई एक किसान तृष्णा किसान आया पानी देने के लिए वो हरिनाम कर रहे थे इतने में उन्होंने उनको पानी पिला दिया तो गुरु जी ने तो उस मंदिर से कुछ बोला ही जब वो किसान चला गया नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाए हुए नरोत्तम तुम भजन करने के लिए आए हो ये हरिनाम कर रहे थे क्या है हरिनाम ऐसे नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं ये भगवान का नाम और भगवान इसलिए नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम नामिना हम जब नाम कर रहे हैं ये नाम का साक्षात हम सेवा कर रहे हैं ये जुगल सरकार की सेवा कर रहे हैं हाँ इसलिए हमारे जो महाराज ने जो नाम महिमा हमने प्रकाशित किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गोस्वामी भक्तिमान ठाकुर जो नाम उन्होंने अर्थ बताए जब हम नाम करते हैं संख्यात रूप में नाम ही स्वयं एवं ब्रत में सक्रिय नाम कृत्वा जातम राज दुर्चति को उच्चई हसत तत रोद द्रोह संख्यात रूप में भगवत लीला प्रकट हो जाता है उस समय संपूर्ण रूप में उनकी सेवा निविष्ट रहता है संपूर्ण कभी हंसता है कभी रोता है क्यों संख्यात लीला से हृदय में प्रकट होता है नाम रूप गुण लीला पैदल समय नाम करते समय संख्यात प्रकट हो जाता है इसमें संपूर्ण सेवा में निविष्ट रहता है तभी यहाँ पर एक किसान को पानी पिलाना दिया तुम्हारा बड़ा काम हो गया राधा कृष्ण के चरण की सेवा छोड़ करके अभी लगता है तुम्हारे कर्म में भी तुम्हारा रुचि है अभी तुम्हारा भजन में भी रुचि नहीं जाओ तुम जाओ प्यासा को पानी पिलाओ अभी यह प्रश्न होता है नरोत्तम दास ठाकुर वो भी मैत्री वो भी आपने का चित्त सिद्ध सकी है और ये भी कारण मैत्री लेकिन अभी क्या गुरुदेव उसको पानी थोड़ी पिला दिया कि गुरुदेव ने निकाल दिया नहीं उसके बाद में मानव गुरुदेव तीन लहर रूप में बताए कि हाँ अभी तुम्हारा भजन अब करते करते अभी भजन में तो परफेक्ट हो गए हो अभी दुनिया के लोग तृष्णार्थ है किसी चीज की तृष्णार्थ है कहते कृष्ण प्रेम की तृष्णार्थ है जाओ सारा दुनिया में कृष्ण प्रेम की नदी की बाढ़ को बहाओ जिस बाढ़ में जिस ब्रह्मांड उसमें डूब जाए इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जा करके श्यामानंद नरोत्तम श्रीनिवास ये तीनों तीन दिशा तरफ में गए और नरोत्तम दास ठाकुर गए इधर गए मणिपुर के तरफ में गए और ऐसे उन्होंने प्रचार किया मुझे लगता है अभी तक इतना प्रचार किसने किया ही नहीं अगर किसी ने भी प्रचार अगर कोई जगह पर कोई करते हैं थोड़ी लोग उसमें आकर्षित होकर जाते हैं पूरा का पूरा नहीं लेकिन ये पहले जाकर तो मणिपुर राजा को उसने शिष्य बनाए और राजा आने पर संपूर्ण मणिपुर ऐसे कोई व्यक्ति बाकी नहीं रह गया जिनको उन्होंने शिष्य नहीं बना करके गला के तुलसी के तिलक और घर घर में उन्होंने राधा गोविंद महाप्रभु ने स्थापन किया उसका कितने साल पहले आए थे लेकिन अभी भी उनका प्रभाव वहां पर दिखाई पड़ता है अभी भी वहां पर जाओ घर घर में महाप्रभु राधा कृष्ण और यहाँ पर जब आते हैं अभी भी लड़कियां ऊपर से लाल पूरा सफेद पेंट थे और घर घर सभी ठाकुर थे इसलिए अच्छे कार्य उन्होंने प्रचार किया महाप्रभु को वाणी को सर्वत्र प्रचार किया उन्होंने इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं साक्षात प्रेमावतार महाप्रभु का इसलिए महाप्रभु जाते समय पद्मावती नदी में अपना प्रेम प्रकट करके जाते हैं पद्मावती यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर आएगा उसको प्रेम में तुमको देकर जाएगा उसको देना पद्मावती में तुझे पता कि चलेगा स्पर्श से अपने आप को प्रेम उत्पन्न लगता हूँ, तब तुम पता चलेगा कि यही नरोत्तम है। इसलिए जब वे आए महाप्रभु जब प्रेम रस लेकर गए थे, उन्होंने प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर को दिया। इसलिए कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते ये महाप्रभु का साक्षात प्रेमावतार, और इनका जो प्रभु प्रेम का हम सब बोल रहे थे, प्रभुपाद जी बताते थे अगर किसी कृष्ण प्रेम चाहिए एक आना में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मतलब कैसे, जब इनका उसी समय था एक आना प्रेम भक्ति चंद्रिका की बस, जब प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक आना से खरीद कर लो और उसके हृदय से उसको पढ़ो, देखो उसके अंदर में क्या उत्कट था, क्या उसमें प्रार्थना, क्या हृदय की आरती, क्या भगवत प्रेम प्राप्त करने का जो तीव्र उत्कट था उसके अंदर में, अद्भुत ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रेम भक्ति की चंद्रिका स्वरूप ग्रंथ है। इसलिए उनका देह हमारे गौरी और वैष्णव के लिए बहुत बहुत प्रेम है, इसलिए वो हमारा बड़ा आशीर्वाद करे। जैसे उनका देह को उनको कृपा एक कण भी अगर हमें प्राप्त हो जाए गुरु जी की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बादशाह का मतलब उससे कृपा
व्हाट ही टोल्ड
Guru Bhakti Gaura Chaitanya Raja Maya Dhabe Krishna Krishna Bhakta Bhakta Namo. So today I went to the Smadhi of Sri Lokanath Goswami. So he was completing his kitchen Vaishnava. He had no material possessions. His only possession was the lotus feet of Sri Gaura Govinda. Sri Gaura and the Mahaprabhu and Sri Govinda Dev. So he was performing bhajan therein. Kadirva. So one day he went to take bath in one kund, Kishori kund. And as he took bath, he came out with a wonderful deity of Sri Radha Vinod. That Radha Vinod deity is there. Yeah. So that deity is so much tribandulali, it looks like he's going to fall over. Very astonishing deity. So the deity was directly speaking with Sri Lokanath Goswami. Oh Baba, I'm very hungry. I need some chutney. Then he would make some chutney from the leaves of the imli tree. Oh, I'm very tired. I want to take rest. Devalokanath Goswami would pick some flowers and make one bed for him. Oh, it's very hot. Devalokanath Goswami would pick some branch and fan Radha Vinod. Then you could imagine what platform he's on when the deity directly speaks with him. Guru Maharaj says the deity never speaks with us because if he told us to do something which was against our sense gratification, and we would not do it. So he had taken a vow. Guru Maharaj says, for example, imagine if the deity woke us up at 1 o'clock in the morning, I'm very hungry, I want some sweet rice. Then it's very cold, then we would probably think some bad dream has come. Therefore the deity does not speak with us. But Lokanath Goswami was not like that. So it said he had taken a vow not to take any disciple. But Sri Narottam Das Thakur, when he came to Vrindavan and he saw the most exalted qualities in the heart of Sri Lokanath Goswami, then Sri Narottam Das Thakur also took a vow. If I accept a guru, it will only be him. But when he approached the feet of Sri Lokanath Goswami and asked for initiation, then Sri Lokanath Goswami declined. So then Narottam Das Thakur was thinking, unless I serve the Vaishnava, I cannot collect his mercy. But how do you serve a Niskijan Vaishnava who does not want to be served? Then you have to be very intelligent. So Krishna in the Gita, he says, Desham Satadiyutanam Bhajatam Pratipurnavakam Vadavani Vudiyonakam Yenamamapriyantike. If someone wants to approach me, I give him the intelligence how to approach me. Therefore, Narottam Das Thakur thought, one seva I can do. In the early morning when Sri Lokanath Goswami goes to perform his Deha Kriya, in his bodily functions, going to the bathroom, that service I can do. Then after Lokanath Goswami would pass, stool and urine, then Sri Narottam Das Thakur, despite being the son of a king, he would personally perform that seva for 1 year, if I'm not mistaken. Then Lokanath Goswami was thinking, who is performing this service? Who is cleaning this very low class service? Who is doing? And I become like an offender, accepting service like this. Therefore, he caught Narottam Thakur. What are you doing? I told you I would not make disciples. You should take initiation from Sri Jiva Goswami. That's what Sri Narottam Das Thakur said. If a girl has chosen another man as her husband, then will she be happy if the father chooses someone else? So he defeated Lokanath Goswami, and very happily he took bath and took mantra. Because that person who has taken the feet of Srivastava really nicely saying, that relationship with Guru is a heartfelt relationship. As soon as he met his Guru, Srinara Lokanath Goswami, he took a sankalpa. I will accept him as spiritual master and no one else. But these days, for none of great misfortune, even though people come to the feet of bona fide Guru, because they have not surrendered their hearts, nor they accepted the Guru, nor are they performing any service to him, what happens? They think, oh, very nice, I can go to Radhakund, take Siddha Pranali, give 5 rupees, and in a fortnight I'll become a monk. Yeah, but because they make? Guru Maharaj says to become a gopi, not a gopi. Therefore, they leave the feet of Sadhguru and go there to take Siddha Pranali. So, Srila Chikrika Maharaj says, Siddha. Siddha means completely cooked potato. Therefore, someone who is not completely cooked, he is not completely mature, then how he can take Siddha Pranali, then he is a half-cooked potato on the inner tank. Therefore, they leave the feet of Guru and they go to the Babaji's. Don't want to mention any names. They go there and they take Siddha Pranali. He tells them everything, your name is this, your dress is this, your age is this. Then after chanting that mantra, because that mantra has not come from a perfected soul, therefore the mantra chanting, but nothing. After some time then, the disciple sees Gurudev also smoking bidis and doing things, and his faith becomes shattered. Then he goes to another Babaji. The Babaji said, ah, that guy is completely useless. Come to me, I'm the real Mahapurush. And he gives him another Manjari Sarup. First he was Rasgula Manjari, now he's become Birthi Manjari. How I can have 2 Sarups in Golga Vrindavan? Then his mind becomes even more confused. Then finally thinks his Harinam Bhajan is completely useless. Begins drinking meat, smoking cigarettes. Again he goes back worse to the condition that he came. So see, Narottam Das Thakur was not that type of disciple, and Sri Lokanath Goswami was not that type of guru. So after Diksha, one time Sri Lokanath Goswami saw he was chanting Harinam, and Narottam Das Thakur was chanting Harinam near him. So one farmer who was thirsty, he approached Lokanath Goswami for a drink of water. But Lokanath Goswami didn't even hear his words, didn't even know he was there, so much he was absorbed in Harinam. Sometimes if we were lucky, we can see a Vaishnava chanting like that. So then he went to Lord Narottam Das Thakur. I am very thirsty. Therefore Narottam Das put down his mala, gave a load of water to the farmer who drank. Then Lokanath Goswami was watching. And he said, Narottam Das Thakur, you are not fit for my sangha. You are not fit for Braja Bas. You should get out of here. Because the chanting of Mahamantra is the highest service to Krishna. And you left the service of Krishna to give water to a farmer? Okay, get out from here. Go and give water to the thirsty people. Then Rasnath Prabhu's commentary, he was saying that really, people are thirsty for what? People are thirsty for Krishna prema and Harikatha. Therefore you should go out and give Harikatha to the starving masses. Go premanandi.
हमारे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को अपने आश्रम से निकाल दिया। किसलिए निकाला? तुम अभी भजन करने के लिए योग्य नहीं हो। जब नाम करते हो तो समझे ये स्वयं राधा और कृष्ण हैं। और नाम करते समय तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन भजे तदानुरागी जनानुरागी काम। ठीक समझो जे ये राधा कृष्ण के स्वरूप है और करते करते वही नाम ही तुमको सारी लीलाओं सारी परिकरों के साथ तुम्हारे हृदय में प्रकटित हो जाएंगे। जब एक कृषक उनके पास आया, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दिया, ओ तुम नाम का स्वरूप अभी तक नहीं जान सका, ओ गृहस्थ जीवन में रहो, अपने घर लौट जाओ, यहीं से सामाजिक सेवा भी करना, वहीं से अपना भजन करना, हमारे आश्रम में मेरे पास रहने योग्य नहीं, निकाल दिया। तात्पर्य क्या, नाम करो, नाम को साक्षात हरे कृष्ण राधिका जी और कृष्ण समझो, और नाम करते समय एकाग्र होकर के करो, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होगा मन विक्षिप्त रहेगा, सेवा नहीं होगी, इसलिए उनको निकाल दिया। निकाल तो दिया, किंतु नरोत्तम ठाकुर जाकर वहां पर कुछ विग्रह स्थापित किए अपने पूर्वाश्रम में, और वहीं से प्रचार करना आरंभ किया, रेने हाटी इत्यादि सुर बनाया, बहुत ही जब सुंदर रूप से कीर्तन करते थे, राधा कृष्ण और महाप्रभु अपने परिकरों के साथ आकर के नृत्य करने लगते थे, इतना सुंदर करते थे। इस तरह से अंतिम समय में उनको पैरालिसिस रोग हो गया। लोगों ने कहा तो ब्राह्मणों को हरि नाम दीक्षा देता है, इसलिए इसकी दुर्गति हुई। उनके शिष्यों ने कहा प्रभु आप इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, ये तो वैष्णव धर्म कलंकित हो जाएगा, आप कृपा करके स्वस्थ हो जाइए। दूसरे दिन स्वस्थ होकर के गंगा नदी में स्नान करने के लिए लोगों ने देखा ये क्या, कल तक जो अपंग आदमी था और ये चलने लगा, तब उनकी भूल भ्रांति दूर हुई, फिर वही लोग भी उनसे हरिनाम और दीक्षा लिया। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही संक्षेप में इन्होंने बतलाया।
अरे कोई पंडित शास्त्रार्थ के लिए आए थे तो उनके
कुछ लोग शास्त्रार्थ के लिए उनके पास आए, ब्राह्मण सबका गुरु है, वैष्णव लोगों की कोई जाति पाति नहीं, इसलिए ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। बहुत से उस समय बांग्लादेश के बड़े बड़े विद्वान स्मार्ट वहां पर आए, जब उस गांव में आए जहां पर कौन सा गांव था,
खेतुरी,
वहां आए, बाजार में एक दुकान पर गए कुछ सब्जी लेने के लिए, तो उन्होंने संस्कृत में उसे बातचीत किया, आपको क्या चाहिए संस्कृत भाषा में, और शास्त्रार्थ में उनको वही पकड़ा, कोई लकड़ी लेने गया रसोई करने के लिए, वहीं पर लकड़ी जो बेच रहा था वो भी संस्कृत में उनसे भाषा से बातचीत करके और उनको परास्त कर दिया। जब वो एक जगह सम्मिलित हुए तो अरे जिनके ये सब लकड़ी बेचने वाले चावल बेचने वाले संस्कृत के इतना महाविद्वान और वैष्णव लोग हैं तो वो कैसा नरोत्तम होगा, बस वहीं से छोड़ करके भागते। उसी की परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्हीं की नरोत्तम ठाकुर की परंपरा में बचपन में बड़े मेधावी थे, संस्कृत पढ़ते ही आरंभ में इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी, बिंदु किरण कना, एनीय वैष्णव परण, जो भक्ति असामित सिंधु क्या
बिंदु
उज्ज्वल नील मणि किरण और भगवतामृत कणा, इसको नहीं पढ़ा, इसका अनुशीलन नहीं किया, वो वैष्णव नहीं है। सर्वसार शब्दों में तीन ही पुस्तकों में छोटी छोटी में सरल सहज संस्कृत भाषा में सभी लोग पढ़ सकते हैं, उन्होंने लिखा है, मैंने उन लोगों के लिए लिखा है, और उसमें सारे रूप गोस्वामी के विचारों को भर दिया, आप लोग उसे देखेंगे पढ़ेंगे। जब वृंदावन में आए तो उनको गुरु जी ने कहा भाई ऐसे नहीं जाओ, अपनी स्त्री से आदेश ले करके तब आओ। गए घर, अपनी स्त्री के पास में गए, सारी रात उनको कृष्ण कथा बोली बोली। जब सवेरा हो गया तो स्त्री से बोले अब मुझे आदेश दो मैं वृंदावन जाऊं। उनकी हरि कथाओं से इतनी प्रभावित हुई जो उनको कहा जैसे आप कृपा करके जाइए, हमारा भी मंगल हो कल्याण हो, ऐसा उपाय कीजिए। तब वो आए। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से संप्रदाय की रक्षा उन्होंने की। पहले तो हम आए, उनको उपाधि दी गई थी महाभाव उपाध्याय। वृंदावन में श्री रघु गोस्वामी का भारतीय भाव जो हमारे संप्रदाय का प्राण है कुछ लुप्त तो होने लगा। जीव गोस्वामी जी ने कुछ अनाधिकारी शिष्यों को, जैसे कि यह राग मार्ग नष्ट न हो जाए इसलिए अधिकारी नहीं समझ करके उनको स्वकीय भाव में भजन करने के लिए कहा। गोपियां कृष्ण की पार्थिव नहीं थी बल्कि विवाहित स्त्रियां थी, राधा की विवाहित स्त्रियां थी। भागवत के कुछ श्लोकों का कुछ अर्थ उलट उलट करके उनके लिए वो शिक्षा दी। गोपाल चांपू में भी उन्होंने ऐसा किया। इस प्रकार से जब वो लुप्त होने लगा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठीक आकर के उनका प्रथम यही कार्य था कि अपने सारे ग्रंथों में उज्ज्वल मणि की टीका है, श्रीमद् भागवत की टीकाओं में अपने गोविंद क्या कृष्ण भावना ग्रंथों में उन्होंने पार्थिव भाव की स्थापना की। इसे कुछ यहाँ के वैष्णव लोग उनके ऊपर में बड़े असंतुष्ट हुए और उनका प्राण लेने के लिए सोचा। वो लोग एक झाड़ी में छिप गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रोज वृंदावन की परिक्रमा करते। उस समय वृंदावन में वन ही वन था, एक जगह घना कुछ जंगल था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब वहां पर आएंगे उस समय इनको मार डाले। चार पांच आदमी, ये पार्थिव भाव की स्थापना कर रहा है, स्वकीय भाव को दूर कर रहा है, इसलिए मारने के लिए वहां पर आकर के छिप गए। उस छिपे में से इतने में देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ रहे हैं, बस एकदम तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद में देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं है, एक पर किशोरी सुंदरी सर्वगुण संपन्ना गोपी उधर से जा रही। चली जाने के बाद में लोगों ने कहा जी ये कौन, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखा और ये देखा। फिर उन्होंने लाली लाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा, बस उनके तरफ में मुस्कुरा करके अंतर ध्यान हो गई और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में अब ये दिखा। अरे इतना महिमा इनकी, इनका सर्वता गोपी स्वरूप है। बस उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगे। इन्होंने ही पंडित विद्याभूषण को जयपुर में भेजा था, झांसी संप्रदाय के और दूसरे संप्रदाय के आचार्यों से कुछ बात युक्त हुआ। उन्होंने राजा से कहा करके गोविंद जी के यहां से राजा जी का विग्रह हटा दिया था और कहा कि गौड़ीय वैष्णव कोई संप्रदाय नहीं है किसी के अंतर्गत। उस समय राजा ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को निवेदन किया। इन्होंने कहा कि मैं तो संकल्प ले चुका हूं, वृद्धावस्था हूं, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, हमारा शिष्य ये बल दे दीजिए। जाएगा वहां पर गए और जाकर के उनकी सभा हुई, सभा ने उनके सारे विचारों को खंडन कर दिया और राधा जी का की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातें तो ठीक है किंतु तुम्हारे संप्रदाय में सूत्र का कोई भाष्य नहीं है, इसे तुमको हम संप्रदाय नहीं स्वीकार करते। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को ही श्रीमद् भागवत का की व्याख्या कहा जाता है, उसका अकृत्रिम भाष्य कहा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ब्रह्म सूत्र का कोई अलग से भाष्य नहीं माना है, ब्रह्म सूत्र का श्रीमद् भागवत ही उसका व्याख्या है। तब उन्होंने कहा जैसे भी हो हम लोग नहीं माने। अच्छा तो हमें एक दिन का समय, सात दिन का, बस लोग राधा गोविंद जी के यहां गए, ध्यान लगाया, गोविंद जी प्रकट हुए, बोले जी मैं बोल रहा हूं तुम लिखते जाओ। तो गोविंद जी ने बुक कहा और उन्होंने ब्रह्म सूत्र का भाष्य बहुत शीघ्र ही उसी एक रात में उन्होंने लिखा और फिर जाकर के उन लोगों को दिखलाया, देख करके चमकती हो गई, एक रात में इतना सुंदर भाष्य लिखा। बस उन्होंने संप्रदाय को स्वीकार किया, दूसरे दिन राजा से कह करके राधा जी की विग्रह भी गोविंद जी के पास में जयपुर में रख दिया गया। इस प्रकार से पूजा सूजा चलने लगी, देखने में छोटे पतले दुबले किंतु धुरंधर विद्वान थे। गोविंद भाष्य ही नहीं बल्कि भाष्य पीठक एक ग्रंथ लिखा, जो पहले भाष्य पीठक पढ़ेगा तब ब्रह्म सूत्र का अर्थ समझ सकता है, उन्होंने किया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गीता की टीका लिखी, बहुत रसिक भाषा, और इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने तंत्र पर उन्होंने उसका भाष्य लिखा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं इसका आदि अंत नहीं, और मैंने सबका ही अनुवाद हिंदी में मैंने किया है। दो एक ग्रंथ कृष्ण भावनामृत हम अभी नहीं छू सके, सब ग्रंथों आप लोग पठन पाठन करेंगे। तो मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जीवन का सबसे अधिक छाप मेरे जीवन में है, मैं जो कुछ बोलता हूँ अधिकांश सब कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के ग्रंथों और टीकाओं के आधार पर बोलता हूं और सारे विश्व में प्रचार। तो वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की समाधि पीठ भी राधा गोपालानंद जी के मठ में है, वो उस विग्रह की प्रतिष्ठा हमारे इन्होंने ही की थी। और वहीं पर महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जो गोवर्धन की शिला दी थी, छोटी सी वो शिला भी वहां पर है, गुंजा महाराज जिसको राधा जी मानता माना जाता है वो भी वहीं पर है। तो आप लोग सब गए, दर्शन किया, उनके विचारों को सुना, आपका जीवन भी धन्य हो। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भावों को ग्रहण करके भजन में अग्रसर हो। कैन यू
So Srila Gurudev told us that Lokanath Goswami, one time a farmer came and Narottam Das Thakur was chanting the holy name of Krishna. That time Narottam Das Thakur offered that farmer some water, and that time Lokanath Goswami told his disciple that you are not qualified to bhajan. Why? Because the holy name of Krishna is not different from him. Tannama Rupa Charitana Sankirtana Sotyo Pramena Rasana Mahasi Vinyarja Krishna Vrajeta Radulaki Janana Lagi Rana Mani Patrinam Kiki Upadesha Sarana. So, one should meditate on Krishna's name, form, qualities and pastimes. Because the name, form, qualities and pastimes of Krishna are not different from him. Therefore, one should be very importantly attentive while chanting the holy name of Krishna. So, Rupanath Goswami told him that you should go to your home. Because you don't have full faith in the holy name of Krishna. When we are chanting the holy name of Krishna, we should understand that Hare Krishna. Hare Radha and Krishna is Krishna. So Radha Krishna. We are serving Radha Krishna together when we are chanting the holy name of Krishna. So then Narottama Thakur, he did the Vigraha Prachar. He established the deities in Bengal, Manipur and other areas. And he wrote very powerful kirtans like Prem Bhakti Chandrika and others. When you perform kirtan, Radha Krishna themselves, along with Sri Chaitanya Mahaprabhu and all their associates would manifest during his kirtan. And they would participate in the kirtan. But though the body of Narottama Das Thakur was fully transcendental, he manifested the pastime of being paralyzed at the end of his life. So seeing that he was paralyzed, some people began to criticize him. Because Narottama Das Thakur was not from a Brahmin family. However, he had many Brahmin disciples. So therefore, people told him that because they initiated Brahmins, Krishna has punished him. And therefore, he has been paralyzed. So his disciples began to lament. They said, alas, our Guru has been severely criticized by this. So they complained to Narottama Das Thakur. And then Narottama Das Thakur exhibited another pastime. He immediately got up and went to the Ganges River to bathe. So then all the people were criticizing Narottama Das Thakur, their mouths were touched, were shut tight. So, actually, one time some Brahmanas, they came, they wanted to debate with Sri Narottama Das Thakur. They wanted to tell that Brahmanas are superior than Vaishnavas. And so they have this pride of dharma. But as Mahaprabhu has said, Kima Vipratyeva Rasi Chitra Jai Kurukhata Kurukhata Se Guru. No one is Brahman. Mahaprabhu has also told, Naam Vipra Vajra Pati Nadu Vaishnava Chitra. No one is Vajra Pati Nadu Vaishnava Chitra. So, Guru has, so, when these people who are from Brahmin family, they came there to debate, so what happened that some people, some disciples of Narottama Das Thakur, they took the dresses of different shopkeepers. So when they came to the shop, actually, when these Brahmanas came to the shop, these disciples of Narottama Das Thakur, who were in disguise, replied to the questions in Sanskrit language. And they defeated all these so-called Brahmanas. So when they went to purchase, they went to the market, wood market, they saw that even the woodcutters and the people selling wood, they were also speaking in Sanskrit language. Seeing this, these Brahmanas were wonderstruck, and they thought that if the people who live in the village of Narottama Das Thakur are so learned, so scholarly, who can speak in Sanskrit and know all the scriptures, and all the scriptures cover to cover, what will be the condition of Narottama Das Thakur? He must be a very exalted scholar. So they all ran away before even seeing the face of Sri Narottama Das Thakur. So Sri Narottama Das Thakur had a very excellent disciple. His name was, in his life was Srila Vishwanath Chandra Thakur, who was the Shiksha disciple of Sri Narottama Das Thakur. He was very scholarly and very expert in Sanskrit. So he has written three books, Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Ujjwala Nilamani Kiran and Bhagavatamrita Kana. It has been said that these three books represent Vaishnavism. If anyone has studied these three books, it means he has understood the mood of Srila Rupa Goswami. And if one has not studied these three books, then he has not understood what Vaishnavism is. So Srila Gurudev has translated these books into the Hindi language. And from Hindi, they have been translated to English and other languages. So we should take advantage of these books. So, in very simple, straightforward and very clear language, Srila Vishwanath Chandra Thakur has expressed the thoughts of Srila Rupa Goswami in his books, and they are very easy to understand. Srila Vishwanath Chandra Thakur, he went to Vrindavan to perform bhajan, but his guru told him that you cannot perform bhajan in Vrindavan, first go and seek permission of your wife before you come to Vrindavan. So he went, returned to Bengal, and he went to his wife, and one entire night, he told us very sweet Krishna Katha. Hearing the sweet pastimes of Lord Krishna from the lips of Vishwanath Chandra Thakur, by the morning time his wife was fully convinced that she should let her husband go to Vrindavan. And his wife told that you can go to Vrindavan and I think we should also pray that something auspicious will happen by the Lord Krishna in my life. So he protected Vishwanatha Thakur. He's actually not different from Rupa Goswami. So he has actually, he's called Mahamahopadhyaya. And he protected the original stream of Vichardhara, the original stream of thoughts in our life. So Rupa Goswami has, in his books, has established Parakya Bhav between Radha and Krishna. And, but Sri Jiva Goswami, who is a disciple of Sri Rupa Goswami, he wanted to protect this Parakya Bhav from the people who are not qualified. And to save people from committing offense at the lotus feet of Sri Radha Krishna, for the unqualified people, he gave some verses of Srimad Bhagavatam, the meanings which were actually suitable that would represent the Swakya mood of Sri Radha Krishna. So, but he actually, also in Gopal Champu, and also on his commentary of Ujjwala Nilamani, Jiva Goswami has some places expressed the Swakya Bhav so that the people who are not qualified or the disciples who are not qualified would understand that Radha Krishna's pastimes are Swakya. However, Sri Vishwanatha Thakur very clearly in his commentaries and all his books, such as Sri Krishna Bhavanamrut and other books, express that the love between Sri Radha Krishna is extramarital, that is actually Parakya mood. So one time, some people in Vrindavan were very much angered to hear that Sri Vishwanatha Thakur has expressed that love between Radha Krishna is Parakya. So therefore they wanted to get rid of him. Every day Sri Vishwanatha Thakur would do the Panchakosi Parikrama of Vrindavan. And one time he was passing on the Parikrama Mark, and there was some dense forest there. And 5 or 6 people were hidden there, and they wanted to kill Vishwanatha Thakur. So as soon as they saw that this elderly Vaishnava is coming, they appeared in front of him. But immediately he vanished from there, and they saw a small girl there, very small, a 10 or 12 year old teenage girl they saw there. So they asked that girl, "Lali Dali, have you seen that elderly Vaishnava was passing from here?" And she said, "No, I have come here by the order of my Swami from Javad. My Swami is in Javad. I come here to pluck flowers." And after that, she disappeared and Vishwanatha Thakur was there. They immediately realized that this is a Mahatma who is actually living in the Gopi there. So they immediately fell down at his feet and asked for his forgiveness. Another greatest contribution of Sri Vishwanatha Thakur, apart from his books, was his disciple, Sri Bharadev Vidyabhushan. So Sri Bharadev Vidyabhushan was the greatest scholar of Gaudiya Vaishnavism. And he was sent to Gattabandi in Jaipur to protect our Sampradaya. Gattabandi, actually some Ramanuja Sampradaya scholars have convinced the king that Srimati Radhika was not married to Krishna. Nowhere in the scriptures has been written that Radhika was married to Krishna. So therefore it is proper to take away the deity of Srimati Radhika from the left hand side of Sri Krishna. So Sri Vishwanatha Thakur was exhibiting the pastime of becoming old. So therefore he sent his disciple, the commander in chief of Gaudiya Vaishnavism, Sri Baldev Vidyabhushan, to Gattabandi. Baldev Vidyabhushan was very thin in his appearance. However, he was very strong in his learning. So there, he established, he cut all arguments of Ramana Sampradaya scholars. And he established that Sri Radhika is the soul Shakti of Krishna and she must be on the left hand side of Krishna. So later on, this Ramana Sampradaya devotees were told that in your Sampradaya, there is no commentary on Brahma Sutra, Vedanta Sutra. So then, Baldev Vidyabhushan Prabhu replied that according to the authority of Garuda Puran, that the commentary, the spotless commentary on Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam itself. And in Gaudiya Sampradaya, we accept Bhagavat as the commentary on Vedanta Sutra. However, they were not satisfied. So then he pleaded to Lord Govinda. He said, "Please give me the time of 7 days. So they gave him the time of 7 days. And he went in front of the deity of Govinda and requested Govinda to manifest this commentary on Vedanta Sutra. And in one night, Govinda dictated and Baldev Vidyabhushan Prabhu wrote down very beautiful commentary on Vedanta Sutra called Govinda Bhashya. And then all these Ramana Sampradaya scholars, they understood that Baldev Vidyabhushan Prabhu is very empowered and they accepted their defeat and Srimati Radhika was established on the book, if someone will study, then you will understand Brahma Sutra very nicely. So Vishwanatha Thakur has written a commentary on Bhagavad Gita called Sanatana Varshini Gita, and that is very excellent prasangita. And we are proud that our Gurudev, our Srila Gurudev, has translated this commentary into the Hindi language, and it has also been translated in English language. See, Bhante Vidyapurusha wrote the commentary on Bhagavad Gita, which is based on Tattva Vichara. So Srila Gurudev is ordering us that we should study the books of Srila Vishwanatha Thakur. Srila Gurudev has said that he has translated many books of, but almost all the books of Srila Vishwanatha Thakur, except for Srila Krishna Bhavanamrita, for which we are not qualified yet. So, we went to the Radha Gokulananda temple, there is the Samadhi Peak of Srila Vishwanatha Thakur. And also there is a Govardhan Shila, which was given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Raghunatha Goswami, Govardhan Shila and Gunjamala. That Govardhan Shila is also present there in Radha Gokulananda.
Brihad Bhagavatamritam. कल तक हमने साधु संघ की महिमा बतलाई, छठा का साधु संघ हमारे जीवन को बदल देता है और राधा कृष्ण के चरणों में प्रेमा भक्ति देने वाला है। बिना वैष्णव के चरणों में अभिषिक्त हुए शुद्ध साधुओं के चरणों में कि पदधूलि से स्नान किए बिना कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिलती है, इसका हमने श्री नरूप सनातन गोस्वामी की श्रीमद् भागवती और दूसरे श्लोकों से हमने बतलाया। बृहद भगवतामृत दो खंडों में है, इसको महाराज परीक्षित मृत्यु के निकट आने पर अपनी मैया उत्तरा को सुना रहे थे। जब यह उपाख्यान दोनों समाप्त हो गए तो वे श्रीमद् भागवत के चुने हुए गोप और गोपियों से संबंधित कृष्ण के रसात्मक भावों को के जितने भी श्लोक हैं उनका वो पाठ करने लगे और उसकी व्याख्या करने लगे। जैमिनी जी ये परीक्षित के लड़के जनमेजय जी को ये कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने अपनी मैया को अंतिम समय में भागवत के परम रसात्मक श्लोकों का जो श्रवण कर रहा था मुझे सुनाओ। जैमिनी जी कह रहे हैं कि उन्हीं श्लोकों को मैं उच्चारण करता हुआ विश्व में सब जगह घूमता हूं और मैं सारे दुखों को भूल जाता हूं, मैं तुमको ये चीजें बतला रहा हूं। यह कह करके उन श्लोकों को जिसको रसायन कहते हैं, भागवत के जितने भी अच्छे अच्छे गोप और गोपियों से संबंधित श्लोक हैं इसमें वर्णन किया है। पहले सबसे पहले वे ब्रह्म संहिता के दो तीन श्लोक पहले बतलाते हैं। मैया को कह रहे हैं और मैं आप लोगों को कहता हूं, गोलोक में हम लोग आप लोगों को ले चलना चाहते हैं, सब लोगों को। तो जहां पर जाएंगे तो उसकी रूपरेखा तो जाननी चाहिए कि वहां पर क्या है, नहीं है, कैसा है स्थान। इसलिए परीक्षित भी अपनी मैया के गोलोक का वर्णन कर रहे हैं कि गोलोक कैसा है, किस कृष्ण अपने परिकरों के साथ में कैसी लीलाएं करते हैं, वहां पर जाकर के तुम क्या करोगे, कैसी सेवा करोगे, तो मैं भी उसी का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूं। जहां पर हमारा गंतव्य स्थान है वो कैसा है, कृष्ण कैसी कैसी दिव्य लीलाएं अपने परिकरों के साथ में करते हैं, उनके वो परिकर कैसे हैं, उनको पहले ब्रह्म संहिता से आपको पहले बतला रहा हूं, जो कि परीक्षित महाराज जी ने अपने मैया को बतलाया था। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता निज रूप तया कला गोलोक निवसत्यपिलात्मभूतो गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस क्या है, उन्नत उज्ज्वल पारकीय रस ही आनंद चिन्मय रस है। उसके द्वारा प्रतिभात उस भाव में, उन्नत उज्ज्वल भाव में जो विभोर रहती हैं, जो कृष्ण के रूप के समान है, निज रूप तया कलाति, कृष्ण जैसे हैं उनकी कायव्यूहार, गोपियां क्या है, राधिका जी की कायव्यूह है और राधिका जी क्या है, कृष्ण ही है, उनके बाम अंग, उनका बाम अंग, उनकी शक्ति लाजरी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, क्या अंतरंगा शक्ति है, वो कृष्ण से कभी भी इधर उधर नहीं होती। तो चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता ये गोपियां हैं, लाजरी शक्ति रूपा श्री राधा जी उनकी काव्य रूपा सखियों के साथ में, अखिलात्मभूत समस्त प्राणियों के अंतर्यामी रूप रहने पर भी गोलोक में पृथक रूप से उन गोपियों के साथ में जो उनकी कलाएं हैं, उनके साथ में नित्य क्रीड़ा विलास में सब समय निमग्न है, उस गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन कर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए ये गोलोक धाम कैसा है, कहते हैं सनातन गोस्वामी जी, गोलोक महात्म काली, गोलोक माने जहां पर गो 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 पौ गोपी गो वत्स इत्यादि निवास करते हैं, उस धाम में। यहां पर पहले एक शंका उठाई गई है कि गोलोक इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में ही है और वहीं पर वो कौन काम है, सुरभि का भी रहती है, इसी लोग सनातन गोस्वामी ब्रह्म संहिता के उन विचारों को लेकर के कहते हैं कि नहीं, जहां पर गो गोपी गोवत्स और गोपियां रहती हैं, विशेष करके वह जो गोलोक धाम है वो पृथ्वी की तो बात क्या, ब्रह्मांड से भी ऊपर, शिवलोक से भी ऊपर, वैकुंठ से भी ऊपर, रामलोक से भी ऊपर, द्वारका से भी ऊपर, मथुरा से भी ऊपर वो धाम है, वहां पर रहते हैं और उनके परिवार, कृष्ण के परिवार वहां पर रहते हैं। परिकर ये गोप और विशेष करके गोपियां, गोपियां कौन है? निज रूप तया कलाभि, कृष्ण के अनुरूप ही है, क्योंकि राधिका जी उनकी अंतरंगा महाभाव स्वरूप उनकी काय रूप है। राधा जी कल्पलता है और गोपियां उसके क्या है? पल्लव पुष्प और पत्तियां। उनके बिना राधा कृष्ण की कोई भी शोभा नहीं, इसलिए उनका सारा परिवार है। उस गोलोक में इन सब परिवारों के सहित रहकर कितने लीलाएं करते हैं उसका वर्णन हम लोग सवेरे कुछ कुछ कर किया है, तो वहां पर निवास करते हैं। वो गोलोक धाम हम लोगों का गंतव्य स्थान है। वो कैसा है? ब्रह्मा जी का है, नीचे से गोलोक धामनी निज धामनी तले चतस्य देवी महेश हरि धाम तेसु तेसु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च जेन गोविंदवादि पुरुषं तमहं। नीचे से कह रहे हैं देवी, देवी धाम, ये देवी धाम है। इसके बाद में महेश, ब्रह्मांड के बाद में शिवलोक है, और उस शिवलोक से ऊपर हरिधाम वैकुंठ है, और उससे ऊपर ये गोलोक वृंदावन धाम है, जहां पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गीय गाय हैं, जिनसे महाक्षीर सागर निरंतर मरता रहता है। ये गायें मत समझो ये हमारी गायें हैं, यहां की कामधेनु हैं, जो कुछ मांगो सभी कुछ दे सकती हैं, और उनसे ही दूधों से क्षीर समुद्र मरता है। वहां पर भूत भविष्य काल नहीं है, सब वर्तमान काल है। यहां पर वर्तमान काल नहीं है, अभी जो मैंने कहा वो भूत हो गया, नहीं कहा वो वर्तमान है। इसलिए जगत में वर्तमान नाम की कोई चीज नहीं है, और वहां पर भूत और भविष्य नहीं है, केवल वर्तमान ही है। इसकी कल्पना हम लोग इस सांसारिक दिमाग से नहीं कर सकते। अखंड नित्य काल है, इसलिए आधा पलक निमेश के समान भूतकाल वहां नहीं, इतना भी भूतकाल नहीं है। मैं इसी श्वेत दीप का भजन करता हूं, ओ इसी पृथ्वी पर उसको महात्मा लोग गोलोक के नाम से जानते हैं, और क्या वहां पर खीर समुद्र बहता है। वृक्ष क्या है? कल्पतरु है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस तरह से वहां पर सब कुछ अलौकिक व्यापार है। अब ये सब गोलोक की महिमा बतला करके फिर अब बतला रहे हैं। अब पुण्यापट बज भो जय गाय नृलिंग गुड़ा पुराण पुरुषा बन चित्र माल्य गापाले अंशा बलम कड़े अंश बेणु बीकिड़ियांचित गिरित रमार्चित
Therefore, in this Srimad Bhagavatamrita, there is a most extensive description of the glories of Sadhusanga. By Sadhusanga, the directions of one's life will be completely changed, and one will ultimately achieve prema to the feet of Sri Radha and Krishna. But without completely bathing oneself in the dust of a pure devotee, the dust from the lotus feet of a pure devotee, there is never any attainment of the Supreme Lord. Therefore, this Brihat Bhagavata Samhita is two sections. One section is where Parikshit described the essence of the Srimad Bhagavatam from which he had heard from Sri Sukadev Goswami to his mother, Uttaradeva. Then he has selected the main slokas describing the relationship between Krishna and his associates. Sri Janmini Rishi has asked from the son of Parikshit, Sri Janmijaya, please describe the essence of the relationship between Radha and Krishna and the gopis and gopis from which you heard from your father. In other words, describe the essence of the Srimad Bhagavatam. Therefore, the essence of that is given by Sri Sanatana Swami in this Bhakti Rasayana. Gurudev says, I want to take you there to Goloka Vrindavan. But before we go there, we should have some description. How it is? What is awaiting for us there? Otherwise, when you go there, what will you do? There should be some clear conception of what seva you will perform there. Therefore, I am describing that essence. The essence of Krishna's past with his associates. Also, how are those associates? What is their sarup? Therefore, we have collected some verses from the Sri Brahma Samhita, spoken by Lord Brahmaji. Ananda Chinmaya Rasa How are the gopis? They are endowed with parikya ras. Their sarup is the same, their group, their form is the same as Krishna's. Their sarup, sorry. Who are the gopis? They are the kaivyuha, the non-different expansions of Srimati Radhika. And who is Radhika? She is Krishna herself. She is Krishna himself. Srimati Radhika is Krishna's antaranga shakti, or Krishna's internal potency. Therefore, those devotees are therefore that Krishna who is always absorbed in Leela, in Goloka Vrindavan, Goloka Dham, I worship him. Govindam eva, Govindam ari purusham samaham bhajami. Therefore, what is Golok Dham, where these associates of Sri Krishna reside? Golok. Lok means planet or residing place of the gopis, the gopas, the cowboys, and the golok, the cows. Therefore, one may arise, a doubt may arise in the mind of someone. There is a Goloka in this world. When Indra wanted to beg forgiveness from Krishna, he went and begged Surabhi Gaya to come from there. Therefore, one Goloka is in this material world, where the cow, the Surabhi cows reside. Is it the same place? Is Goloka Vrindavan in this universe? Then Sri Sanatana Goswami, he reconciled this. No. Where the gopis and the gopas reside, that is Goloka Vrindavan, Goloka Dham. Then what to speak of not being on this earth planet, Goloka Dham is not even within this universe. It is not even within Vaikuntha. It is not found even on the planet of Lord Ram, or in Mathura, or Dwarka. It is completely beyond all of these. And in that Goloka Dham, Krishna with his own family and personal associates eternally reside there. And who are the gopis? They are Radharani's Kaivyuha, non-different expansions. They are not different than Radhika, and Radhika is not different than Krishna. Srimati Radhika is, what is her sarup? She is Mahabhav sarup. Her body is composed of Mahabhav. Radhika sarup, Krishna prema kalpalata. Tarasaki gan, tarap putrapata. Srimati Radhika is described to be the wish-fulfilling vine of Mahabhav. And the other gopis are simply like flowers, twigs, and leaves on that wish-fulfilling vine. means no different expansions. Without the Sakis, there is no beauty in the pastime of Radha and Krishna. There are so many leelas performed there, and in the morning time we are discussing just one drop of them. We should know that this Goloka Dham is our ultimate abode and our real home. Then where is it situated? See, Brahmaji says, Goloka Nathri Vijadambi Pavichatasya. It is beyond this Devi Dham. It is beyond the abode of Mahadev Shiva. It is even above Haridam Vaikuntha. It is situated above all of these things. And Krishna is the presiding deity of that Goloka Dham, Tamaham Bhajami. I wish to worship him. Therefore, the Surabhi cows, from the milk of the Surabhi cows has come the milk ocean. From the milk of the Surabhi cows has come the milk ocean. But the cows in Goloka Vrindavan are not ordinary cows of this world. They are not even like Surabhi cows. They are in fact Kamadenus. Kamadenus are cows which can fulfill any desire at all. Therefore the Goloka Dham, the residence of Krishna, is beyond even the Goloka Dham where the Surabhi cows reside on the bank of the milk ocean. In that Goloka Dham, there is no time at all. There is no past or no future. There is only Nitya Bhartaman Kala, eternally present time. Guru says, for example, what I'm speaking now has just gone into past tense. But that is not so there. There is no past, no future. Of course, we cannot understand this Goloka Dham or this situation simply by mental speculation. Therefore, because it is beyond the mind and senses, it is called Goloka. What to speak of the cows being covered in us? Even the trees are not like this world. The trees are all kalpa viksha, wish fulfilling trees.
जो क्षीर सागर का दूध है वो काम धेनु गायों से है या सुरभि ये कह रहे थे सुरभि गाय से है मेरा ऐसा विचार है कि आपने कहा था जो बोलो में काम धेनु गाय है उनका दूध से क्षीर सागर का दूध
यहाँ पर तो ऐसा ही है वहाँ पर जो गाय हैं अनंत गाय हैं और गाय का दूध भी अनंत है इसलिए क्षीर समुद्र का महासन निकालना कोई बात नहीं है यहाँ तक आ गया उनकी तो बात दूर है जो सोदा जी के स्तन से जो दूध निकला है वो भी इसलिए ये सभी बातें ठीक है यहाँ तक कहा है गोलोक में कृष्ण ही एकमात्र कांत है और जितनी गोपियां हैं वो लक्ष्मी से भी लक्ष्मी है सभी वृक्ष चिन्मय है कल्पतर और भूमि चिंतामणि है वहां की एक एक धूली कणाएं चिंतामणि माने जो कुछ कहो वही कुछ दे दे और वहां का जल ही जितना जल है वो सब अमृत है वहां पर बोलना भी गान है जो कुछ बोलती है गोपियां और कृष्ण वो सब गान है उनका चलना ही नृत्य है जो चलते हैं वो सब नृत्य है और बंसी प्रिय सखी है कृष्ण की वहां पर ज्योति करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी अधिक कृष्ण की अंगों से जो कांति निकलती है वो वहां पर कांति है और वो कैसी है चिदानंदमयी वो है वहां पर रसगंध इत्यादि चित पदार्थ आस्वादनीय है करें पुण्यावत पुण्यावत प्रभु जतायेंगे कृष्ण नंदगांव से बलदेव प्रभु जी के साथ अकूफ के लाए जाने पर आए। प्रातः काल में रंगशाला में प्रवेश किया। कुबल्याहती महाबलवान उनको मारा। रंगशाला में प्रवेश किया, चारण मस्तक ठोक करके उनको पकड़ करके अखाड़े में खींच लिया। कृष्ण ने कहा, हम तो बालक हैं और तुम लोग पहाड़ जैसे पर्वत मल्ल हो। हम अपने समवयस्कों से ही मल्ल क्रीड़ा करें। अरे तुम छोटी उम्र का नहीं है, पुतना को मारने वाले अर्भासुर बकासुर को मारने वाले साधारण नहीं हो। हम राजा का मनोविनोद करेंगे और खींच करके लड़ने लगे। उस समय वहां उपस्थित थी मथुरा की जादव की राजकुमारियां, उनकी पत्नियां बड़ी दुखित हुई। इस सभा में अन्याय हो रहा है, एक छोटे से बालक से महाबल्ल से ये युद्ध हो रहा है, यहां पर अन्याय हो रहा है। राजा भी इसका अनुमोदन कर रहा है, इसलिए यहां पर जो रहेगा उसको अधर्म लगेगा। अहो, वृंदावन ही धन्य है, ब्रजभूमि धन्य है। वहां पर गोपियां गो कृष्ण को प्रसन्न मुद्रा में गोचार करते हुए, बंसी बजाते हुए, नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए, राग इत्यादि करते हुए देख रहे हैं। हम दुर्भागा कृष्ण को इस समय में चारण मस्तक जैसे योद्धा उनको प्राण लेने के लिए उनसे लड़ रहे हैं, अन्याय हो रहा है। ओ तब वही पढ़ता रहे, ओहो ब्रजभूमि धन्य है। कैसे धन्य है? यहां पर जादवों के साथ में कृष्ण बंसी नहीं धारण कर सकते, मयूर मुकुट धारण नहीं कर सकते, अपने को नंदनंदन नहीं कर सकते यशोदा नंदन, और वो बालकों के साथ में स्वच्छंद गति से क्रीड़ा नहीं कर सकते। गोपियों के साथ में जिस प्रकार से रास इत्यादि किया वो यहां पर मथुरा में संभव पर नहीं है। यहां पर इसलिए नीचे ही ब्रजभूमि वहां के चराचर धन्य है। ब्रज भूओ यहां पर बहुवचन है, भुआ भूओ गौरव के लिए यहां पर उसका प्रयोग हुआ। भू पुण्यापत ब्रज भूओ भू प्राणी मात्र के लिए, वृंदावन के जो प्राणी मात्र हैं, गोल मलता इत्यादि गोप गोपियों की तो बात ही क्या। शिला कास्ट भी ब्रजभूमि में जो कुछ है वो कृष्ण विविध प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते हुए भ्रमण करते हैं। पैर में जूती नहीं देते, खाली पैर अपने ध्वजा और अंकुश इत्यादि 19 चिन्हों से लक्षित चरणों से ब्रजभूमि में सर्वत्र विचरण करते हैं। इस सभा को धिक्कार है, यहां पर कृष्ण को मारने की चेष्टा हो रही है, जिसके सभासद कृष्ण को पराजित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः ब्रजभूमि ही परम धन्य है, जहां पर कृष्ण स्वच्छंद रूप से सभी लीलाओं को करते हैं। अथवा यहां के नागश्रेष्ठ क्षत्रिय जादों से ब्रज का सचेतन प्रपंच ही परम धन्य है। यहां के जादुओं से वहां का एक तिल गुल्म लता भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण को वो सम्मान करते हैं और यहां पर मारने की चेष्टा हो रही है, अंगुली से देखा करके ये कह रहे हैं। चतिको वृद्ध गर्गाचार्य इत्यादि के वचन और प्रमाण के अनुसार संसार में कृष्ण इस स्थान के प्रभु हैं, ईश्वर हैं। अतएव यहां पर जो कृष्ण आए हैं तो मधुपुर ही धन्य है, क्योंकि यही तो परब्रह्म है। इसलिए कृष्ण जब मथुरापुरी में आए तो मथुरापुरी भी धन्य होनी चाहिए। ओ, ऐसा हो सकता है। तथापि ब्रज और ब्रज भूमि और ब्रज में जितने चराचर हैं वही धन्य है, क्योंकि कृष्ण पुराण पुरुष है। पुराण माने आदि पुरुष है, और बार बार अनेक रूप से सभी के हृदय में वास करते हैं अणु अणु रूप में। और ऐसे होकर के भी शिव जी, रमा, महालक्ष्मी इनकी सब समय पूजा करते हैं, और इतना होने पर भी वे ब्रज में मनुष्य के बालक रूप में, अबोध बालक के रूप में विचरण करते हैं, गौवा चराते हैं, गवार जैसा गौवा चराते हैं, किंतु मनुष्य वेश में आए हैं छिप करके। गुणा नृलिंग पुरुष पुराण पुरुष हैं, जिसको पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया है, अथवा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से कंस को वंचना करने के लिए अपने वैभव को अभी प्रकाश नहीं किया। कृष्ण का कैसा प्रभाव है उसको अभी कृष्ण नहीं कर रहे, पीछे करेंगे। कब? जब नीचे से मंच से कूदकर बहुत ऊंचाई पर रंग मंच पर जहां कंस बैठा है, सिंह की तरफ उछल करके जाएंगे, चोटी पकड़ करके गिरा करके उसके छाती के ऊपर में गिर जाएंगे, तब कंस समझेगा, समझने का अवकाश नहीं रहेगा, मारा जाएगा। वहां पर किंतु यहां पर ये लीलाएं संभव नहीं है ब्रज में, यहां मथुरापुरी में। क्या मथुरापुरी में कुंज है, निकुंज वन है, जहां पर वो लीला करेंगे, जहां पर गोचारण करेंगे वो वन है, जहां पर कृष्ण क्रीड़ा करेंगे बलदेव जी के साथ में, और फिर सबलम निश्चय इत्यादि सिद्धार्थ गोस्वामी के व्याख्या अनुसार बल माने सैन्य, अर्थात तो अपने सहचर गोप और गोप बालकों के साथ में गोचारण करते हैं। ये गो कौन है? गाय पात्या है, श्रुतियां है, गाय के रूप में है। उन श्रुतियों का पालन करके, रक्षा करके जगत को रक्षा करते हैं, श्रुतियों से विश्व को मोहित करने वाली बेणुगात गीत और रास क्रीड़ा यहां पर होती है। मथुरापुरी में ये सब संभव नहीं है। भवार्थ श्रुति स्मृति के अर्थों में अनुरक्त ये क्षत्रिय कृष्ण को पुराण पुरुष समझते हैं, साक्षात परब्रह्म, मथुरा के उद्धव इत्यादि। और ब्रज में कोई उनको उस रूप में नहीं जानता, अपने बाप के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में। जो सोदा भैया उनको अपना पुत्र समझते हैं, बांधती हैं, डराती धमकाती हैं। मथुरा में ये सब लीलाएं संभव पर नहीं है। इस प्रकार से कारण कृष्ण ने जिस प्रकार अपने प्रेमी भक्तों के साथ में ब्रज में लीलाएं की हैं, वैसे जातों के साथ में लीला करना कभी भी संभव पर नहीं है। यदि संभव भी हो तो तथापि वन्य वेश जो कृष्ण का है वो कैसे मथुरा में संभव, द्वारका में कहां से संभव होगा? यदि वैसा हो भी जाए तथापि राजराज स्वर्ग मथुरा में और द्वारका में गोचारण कैसे होगा? इसलिए द्वारकाधीश है, गोचारण करेंगे, लक्ष्य हाथ में लेंगे, गायों के पीछे पीछे जाएंगे, ये सब लीलाएं नहीं है। यदि गोष्ठ राज्य के अधिपति होने से वह लीला भी संभव हो तो बलराम जी के साथ निरंतर संग नहीं हो सकता, कि अपने अपने कर्तव्य पूरा में लग जाते हैं और ब्रज में एक साथ में रह करके सारी लीलाएं करते हैं। उनका मधुर वेणु वादन भी वहां पर संभव नहीं हो सकता है। रास लीला की बात तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार से गोपियां ब्रज की और ब्रज की समस्त गोपियों की और गोपों की सबकी प्रशंसा कर रही हैं, और कहीं हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जहां कृष्ण लड़ रहे हैं शत्रु उन्हें मारने की चेष्टा कर रहे हैं वहां पर कृष्ण को देख रही हैं गोपियां, और वहां के चरचरासुरवासी सब धन्य है जो कृष्ण को उन्मुक्त अवस्था में दर्शन करते हैं।
राम
जी करें, इनकी भाषा समझेंगे। जल्दी कीजिए,
taken to Mantra by Yakura. peacock feather. And he is having flute in his hand. And Krishna is walking there barefooted. He has 19 different
auspicious
marks beneath his feet. And all those marks are present in the land of Braj. This is the speciality of Braj. Here, in the assembly of Yadav, Krishna cannot live like this. Krishna is here like a king. There, even a smaller thing like a straw,
Gulmulata,
creeper, everything is honoring and serving Krishna. But here, this Chandur Mustik and Kams and other people, they want to kill Krishna. So there is no any competition between this place and Braj. Then another point was put forth here, that can Krishna perform Raj Dance in Mantra? No. There is no space for Krishna, no scope for Krishna to perform Raj Dance in Mantra. There is no place where Krishna go for cow raising in Mantra. Krishna cannot play contribute in Mantra. Everyone has honorable relation with Krishna. They worship Krishna. But in that, Krishna is taken as a friend, as son, as their lover. No one accept Krishna as their Puran Purush, Puran Purush means
worshipable.
So there is so much difference. There is no any point in the mantra. There is no any cow raising facility in mantra. Who are these cows? Srila Gurudev is explaining. They are verses of Shrutiya, our scriptures. Krishna is looking after all these scriptures in the form of cows. And hence, Krishna is protecting whole universe and our prithvi also. These Kshatriya, Yadav are Kshatriya, Udhav is Kshatriya, they consider Krishna as one of his, their Kshatriya family member, but also they consider him as God. They worship him. But in Braj, there is no worshipping of Krishna. Krishna performs so many sweet pastimes in Braj, which is not possible here. This place is full of Raj Aishwarya, which live there in a royal status. Therefore, he cannot perform all those activities which he was performing in Braj. All the dancers and everyone from Braj are very fortunate. They are comparing this place
with Braj.
I am out of form.
Out of form.
So, forgive my mistakes.
Hare Krishna.
Kal hum log program sabse